यर्मिया बाब 11। रब यर्मिया से हम कलाम हुआ, यरूशलेम और यहूदा के बाशिंदों से कह कि उस अहद की शरायत पर ध्यान दो जो मैंने तुम्हारे साथ बांधा था। रब जो इसराइल का खुदा है फरमाता है कि उस पर लानत जो उस अहद की शरायत पूरी न करे जो मैंने तुम्हारे बाप दादा से बांधा था जब उन्हें मिस्र से निकाल लाया उस मकाम से जो लोहा पिघलाने वाली भट्टी की मानिंद था। उस वक्त मैं बोला, मेरी सुनो और मेरे हर हुक्म पर अमल करो तो तुम मेरी कौम होगे और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा। फिर मैं वो वादा पूरा करूंगा जो मैंने कसम खाकर तुम्हारे बाप दादा से किया था। मैं तुम्हें वो मुल्क दूंगा जिसमें दूध और शहद की कसरत है। आज तुम उसी मुल्क में रह रहे हो। मैं यर्मिया ने जवाब दिया, ऐ रब आमीन, ऐसा ही हो। तब रब ने मुझे हुक्म दिया कि यहूदा के शहरों और यरूशलेम की गलियों में फिरकर ये तमाम बातें सुना दे, ऐलान कर, अहद की शरायत पर ध्यान देकर उन पर अमल करो। तुम्हारे बाप दादा को मिस्र से निकालते वक्त मैंने उन्हें आगाह किया कि मेरी सुनो, आज तक मैं बार बार यही बात दोहराता रहा लेकिन उन्होंने न मेरी सुनी न ध्यान दिया, बल्कि हर एक अपने शरीर दिल की जिद के मुताबिक जिंदगी गुजारता रहा। अहद की जिन बातों पर मैंने उन्हें अमल करने का हुक्म दिया था उन पर उन्होंने अमल न किया। नतीजे में मैं उन पर वो तमाम लानतें लाया जो अहद में बयान की गई हैं। रब मजीद मुझसे हम कलाम हुआ, यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों ने मेरे खिलाफ साजिश की, उनसे वही गुनाह सरजद हुए हैं जो उनके बाप दादा ने किए थे, क्योंकि ये भी मेरी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये भी अजनबी माबूदों के पीछे हो लिए हैं ताकि उनकी खिदमत करें। इसराइल और यहूदा ने मिलकर वो अहद तोड़ा है जो मैंने उनके बाप दादा से बांधा था। इसलिए रब फरमाता है कि मैं उन पर ऐसी आफत नाजिल करूंगा जिससे वो बच नहीं सकेंगे। तब वो मदद के लिए मुझसे फरियाद करेंगे लेकिन मैं उनकी नहीं सुनूंगा। फिर यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदे अपने शहरों से निकलकर चीखते चिल्लाते उन देवताओं से मन्नत करेंगे जिनके सामने नजूर जलाते रहे हैं, लेकिन अब जब वो मुसीबत में मुब्तला होंगे तो ये उन्हें नहीं बचाएंगे। ऐ यहूदा, तेरे देवता तेरे शहरों जैसे बेशुमार हो गए हैं। शर्मनाक देवता बाल के लिए नजूर जलाने की इतनी कुर्बानगाहें खड़ी की गई हैं जितनी यरूशलेम में गलियां होती हैं। ऐ यर्मिया, इस कौम के लिए दुआ मत करना, इसके लिए न मन्नत कर न समाजत, क्योंकि जब आफत उन पर आएगी और वो चिल्लाकर मुझसे फरियाद करेंगे तो मैं उनकी नहीं सुनूंगा। मेरी प्यारी कौम मेरे घर में क्यों हाजिर होती है? वो तो अपनी बेशुमार साजिशों से बाज नहीं आ रही। क्या आने वाली आफत कुर्बानी का मुकद्दस गोश्त पेश करने से रुक जाएगी? अगर ऐसा होता तो तू खुशी मना सकती। रब ने तेरा नाम जैतून का फलता फूलता दरख्त जिसका खूबसूरत फल है रखा, लेकिन अब वो जबरदस्त आंधी का शोर मचाकर दरख्त को आग लगाएगा, तब उसकी तमाम डालियां भस्म हो जाएंगी। ऐ इसराइल और यहूदा, रबुल अफवाज ने खुद तुम्हें जमीन में लगाया लेकिन अब उसने तुम पर आफत लाने का फैसला किया है। क्यों? तुम्हारे गलत काम की वजह से, और इसलिए कि तुम बाल देवता को नजूर की कुर्बानियां पेश करके मुझे तैश दिलाया है। रब ने मुझे इत्तला दी तो मुझे मालूम हुआ, हाँ उस वक्त तू ही ने मुझे उनके मंसूबों से आगाह किया। पहले मैं उस भोले भाले भेड़ के बच्चे की मानिंद था जिसे कसाई के पास लाया जा रहा हो। मुझे क्या पता था कि ये मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। आपस में वो कह रहे थे, आओ हम दरख्त को फल समेत खत्म करें और आओ हम उसे जिंदों के मुल्क में से मिटाएं ताकि उसका नाम और निशान तक याद न रहे। ऐ रबुल अफवाज, तू आदिल मुनसफ है जो लोगों के सबसे गहरे ख्यालात और राज जांच लेता है। अब बख्श दे कि मैं अपनी आंखों से वो इंतकाम देखूं जो तू मेरे मुखालिफों से लेगा। کیونکہ میں نے اپنا معاملہ تیرے ہی سپرد کر دیا ہے۔ رب فرماتا ہے، انتوت کے آدمی تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رب کا نام لے کر نبوت مت کرنا ورنہ تو ہمارے ہاتھوں مار دیا جائے گا۔ چونکہ یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اس لیے رب الافواج فرماتا ہے، میں انہیں سزا دوں گا، ان کے جوان آدمی تلوار سے اور ان کے بیٹے بیٹیاں کال سے ہلاک ہو جائیں گے، ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا، کیونکہ جس سال ان کی سزا نازل ہوگی اس وقت میں انتوت کے آدمیوں پر سخت آفت لاؤں گا۔